ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೀರುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ. ಸಬ್ ಲೋಕ್ ಬೋಲಿಯೇ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ತೋ ಆಜ್ ಕೆ ಇಸ್ 20 ಮೈ ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೇ ಜೊ ಶ್ಲೋಕ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಹೋನೆ ಕೆ ಪಹಲೆ, ಉಸ್ಮೇ ಸೇ ಏಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ, ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಉಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಸೇ ಹೈ ಔರ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಕಾ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋನಾ ಯೇ ಬಡಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಜೀವನ್ ಮೇ ಬಡಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ಐಸಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಲೋಗ್ ಪಿಛಲೆ ಜನ್ಮೋ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರಾ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಅವಶ್ಯಕ ಜೋ ಚೀಜೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ವೋ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೈ, ಉನ್ನೀ ಕೋ ಇಸ್ ಜೀವನ್ ಮೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಪರಿಚಯ ಹೋತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಕಾ ಮತಲಬ್ ಆಪ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋಂಗೆ ಯಾ ನಹೀ ಜಾನ್ತೆ ಹೋಂಗೆ, ಲೇಕಿನ್ ಅಗರ್ ಆಪ್ಕೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ಶ್ಲೋಕೋ ಕಾ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ನೆ ಕೋ ಮಿಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಯೇ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಪಿಛಲೆ ಜನ್ಮೋ ಮೇ ವೋ ಸಬ್ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೆ ಫಲ್ ಕೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಪರಿಚಯ ಹೋತಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಜಬ್ ಪರಿಚಯ ಹೋತಾ ಹೈ ಫಿರ್ ಭೀ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮ್ ಉಸ್ಕೋ ಮಹತ್ವ ದೇತೆ ನಹೀ ಹೈ ತೋ ಫಿರ್ ವೋ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಕಹತೆ ಹೈ. ಭಾಗ್ಯ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ಕಾ ಪರಿಚಯ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಐಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಸೇ ಏಕ್ ಭೀ ಶ್ಲೋಕ ಆಪ್ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ತೆ ಹೋ ತೋ ಆಪ್ಕಿ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ. ಔರ್ ಏಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಕಾ ಅಗರ್ ಏಕ್ ಚೌಥಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಅಗರ್ ಆಪ್ ಜೀವನ್ ಮೇ ಉತಾರತೆ ಹೋ ತೋ ಆಪ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಧಾಮ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ಸಮಜ್ತೆ ಹೋ ಇತ್ನಿ ಪಾವರ್ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಔರ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೇ 700 ಶ್ಲೋಕ ಹೈ, ಭಾಗವತಂ ಮೇ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಹೈ. ಇನ್ಮೇ ಸೇ ಕಿಸಿ ಭೀ ಏಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಕಾ ಏಕ್ ಚೌಥಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಅಗರ್ ಆಪ್ನೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಉತಾರಾ, ಅಪ್ನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮೇ ಉತಾರಾ, ತೋ ಆಪ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಪ್ಕೋ ಲೇ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಇತ್ನಿ ಶಕ್ತಿ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್. ತೋ ಯೇ ಜೋ ಶ್ಲೋಕ ಹಮ್ನೆ ಬತಾಯಾ ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ಔರ್ ಆಗೆ ವಾಲಾ ಬತಾಯಾ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕಿ ನಂದನಾಯ ಚ, ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಕುಂತಿನೆ ಪುಕಾರಾ ಹೈ ಜಬ್ ವೋ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ ರಹೀ ಥೀ. ತೋ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕಿ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಯೇ ಕುಂತಿ ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಆತಾ ಹೈ ಔರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಕೆ ದೂಸರೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಆತಾ ಹೈ, ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು. ಉಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಶ್ರವಣ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಜೋ ಭೀ ಅಭದ್ರ ಹೈ, ಅಭದ್ರ ಯಾನಿ ಅಪವಿತ್ರ ಹೈ, ಜೀವನ್ ಮೇ ಯೋಗ್ಯ ನಹೀ ಹೈ, ಜೀವನ್ ಮೇ ಅಪವಿತ್ರತಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಐಸಾ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಶ್ರವಣ ಕರ್ನೆ ಸೇ ನಷ್ಟ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಶ್ರವಣ ಕರ್ನೆ ಸೇ हृदय में स्थिर भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए हम आगे ये श्लोक बोलते हैं ताकि हमारा मूड बने उसके लिए, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मतलब क्या है कोई जानता है? ध्रुव महाराज ने जब तपस्या की थी तो इस मंत्र का जप किया था। पूरे मानव जाति के इतिहास में भक्तों के बीच में इतना तीव्र तपस्या कोई नहीं किया है तक, इतना कठोर तपस्या। 6 महीना तपस्या किया, आखिर में तो हवा भी लेना बंद कर दिया। उसके पहले केवल सूखे पत्ते खाते थे, उसके पहले केवल जल पीते थे, उसके पहले केवल कंदमूल खाते थे। कंदमूल के बाद में वो छोड़ दिया और सूखा पत्ता खाना शुरू कर दिया। उसके बाद में वो छोड़ दिया और फिर पानी पीना छोड़ दिया, चालू किया। फिर पानी पीना भी छोड़ दिया और केवल सांस पे जीने लगे। उसके बाद में दिन में केवल कुछ समय सांस लेते थे, बाद में सांस भी लेना बंद करते थे। इतनी कठोर तपस्या की, लेकिन ये सारी तपस्या करते हुए कौन सा मंत्र जपा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि ने उनको ये मंत्र दिया था। उसका अर्थ क्या है? हे भगवान, मैं अपने आप को आपके शरण में रखता हूँ। आई सरेंडर अन टू यू। हे भगवान, मैं अपने आप को आपके लिए समर्पित करता हूँ। तो कथा शुरू होने के लिए क्यों बोलते हैं? तो कथा भगवान की होती है ना, थोड़ी फिल्म स्टार की कथा हो रही है, थोड़ी कोई राजनीति वाले लोगों का जीवन चरित्र पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। ये भगवान का चरित्र पढ़ा जा रहा है, भगवान के भक्तों का चरित्र पढ़ा जा रहा है। इसलिए पवित्रता उत्पन्न करने के लिए कथा के शुरुआत में ये सारे मंत्र हम बोलते हैं, ताकि हमारा मूड जो है वो कथा को समझने में और उसका मनन करने में योग्य बन जाए, है ना। तो आज आपको हम हमारे हॉस्पिटल के कल्चर के विषय में बताएंगे। उसके पहले उसकी भूमिका बताएंगे। जैसे अभी आपको भक्ति विधान में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको श्रीमद् भागवत का परिचय हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुबह की प्रार्थना में आप 10 बजे आते हो और दोपहर के 2 बजे में आते हो, तो मॉर्निंग की प्रार्थना होने के बाद में क्या पढ़ते हैं? श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ते हैं। आप लोग तो 50 लोग खड़े होंगे शायद, 25-25 खड़े होंगे, माता 25, प्रभु 25, लेकिन 100-150 मरीज ऐसे खड़े रहते हैं उधर। कोई एक्सरे के पास खड़ा है, कोई डॉक्टर के पास बैठा हुआ है, कोई ओपीडी में खड़ा है, रिसेप्शन में खड़ा है, कोई बिल दे रहा है, कोई बिल भर रहा है, कोई फॉर्म भर रहा है, कोई वेट कर रहा है, कोई लिफ्ट के पास खड़ा है। वो सब लोग सुनते हैं श्रीमद् भागवत। इसका अर्थ ये हुआ कि वो चाहे लिफ्ट के पास खड़े हों, वो या पेपर बना रहे हों, या डॉक्टर का इंतजार कर रहे हों, उन सब लोगों ने पिछले जन्मों में वो पुण्य कार्य किए हैं जिसका फल श्रीमद् भागवत है। और वो मरीज के बहाने आए यहाँ पर, लेकिन भगवान उनको अपने पूर्व पुण्य का फल दे रहे हैं। इसका मतलब भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में आने वाले हर एक मरीज जो है वो भाग्यवान जीव है। और इस हॉस्पिटल में काम करने वाले हर एक कर्मचारी जो है वो भाग्यवान जीव है। कभी कभी ना अपना भाग्य क्या है इस हमको खुद को ही पता नहीं होता है। जैसे कोई भिखारी है रस्ते पर, वो जन्म से ही उसका माँ बाप से बिछड़ गया था। वो माँ बाप कहीं हो गया, वो कहीं खो गया, तो क्या करेगा बेचारा? भीख मांगने लगा पेट भरने के लिए। लेकिन जब वो छोटा सा था, 2 महीने का, तब वो बालक खो गया था किसी कारण, किसी घटना के कारण। लेकिन उसको पता नहीं है कि वो किसी अमीर आदमी का बच्चा है, उसको पता नहीं, इसलिए वो भीख मांग रहा है। लेकिन अगर कोई आके उसको बताएगा, अरे बालक तुम जो धनी आदमी है ना, भारत का नंबर 3 का, उसका बालक हो तुम, तो उसको पहले हंसी आएगी, बोले क्या मजाक कर रहे हो, एक तो भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा है, और आप बोल रहे हैं मैं इंडिया के नंबर 3 आदमी का, धनी आदमी का बच्चा हूँ। लेकिन कुछ देर बाद में अगर उसको कुछ प्रूफ दिया जाए, कुछ समझाया जाए कि आपका ये भाग्य है कि आप दुर्भाग्य से उसको भूल गए, मतलब गुम हो गए थे आप, लेकिन आज आपका भाग्य फिर उदय हो रहा है क्योंकि आज आपको पता चल रहा है कि आप उस धनी आदमी के बेटे हो। तो वो तुरंत क्या करेगा बताओ, बता सकते हैं आप कोई? जिस समय उसको विश्वास हो जाएगा कि ये जो उसको बताया जा रहा है वो सही है, तो सबसे पहले क्या करेगा वो बताओ? आप क्या करोगे अगर आप उस जगह पर हो? आप क्या करोगे अगर आप उस जगह पर हो? रस्ते में बैठे भिक्षा मांग रहे हो, कोई बोल रहा है आपको कि आप इंडिया के नंबर 3 आदमी के बालक हो, और आपको भी विश्वास हो गया कि वो बोल रहा है, वो प्रूफ देके बता रहा है वो सही है, तो क्या करोगे बताओ ना आप? अरे भीख मांगना छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? कितनी कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले भीख मांगना बंद करोगे आप, है ना? तो जरूरत नहीं भीख करने की, तो बैठ के खाना मिलेगा, पंच पकवान 56 भोग। तो सबसे पहले वो जो कार्य गलती से कर रहा था, अनजाने में कर रहा था, वो छोड़ देगा। उसी तरह से भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में हम लोग कोई हाउसकीपिंग में आए हैं, कोई आईटी में आए हैं, कोई डॉक्टर बन के आए, कोई नर्सिंग में आया, कोई हाउसकीपिंग माताजी आए हैं, कोई पैथोलॉजी में आया, कोई नर्स बन के आए हैं, डॉक्टर बन के आए हैं, लेकिन यहाँ पर सबको बताया जा रहा है कि आप डॉक्टर हो, नर्स हो, हाउसकीपिंग हो, सब कुछ हो, लेकिन सबसे पहले आप भगवान के बालक हो। तो आप वो सब काम करना छोड़ दोगे जो आप गलत काम कर रहे थे, वो छोड़ देंगे आप तुरंत। अभी आपको भगवान के बालक की तरह काम करना है। अभी एक पत्नी है, समझो एक लड़की है जिसकी शादी हो जाती है, शादी के पहले किसी घर में थी, वो किसी की बेटी के रूप में थी, लेकिन अभी वो शादी होने के बाद में किसी की पत्नी बन गई है, तो फिर भी वो किसी की बेटी की तरह ही काम करते रहे तो चलेगा क्या? उसको अभी नया रोल में काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। बोले नहीं मेरे को पतंग उड़ाने का है, ना मेरे को गोटी खेलने का है, ना मुझे खेलने को जाने का है समुंदर पे, और मेरे को अभी बचपन का आदत याद आ रही है, वो समुंदर में रेती का पर्वत बनाने का है मुझे, मुझे खिलौना ला के दो, ऐसा बोलेगा तो कहेंगे लड़की पागल है ये। वो बचपन में सब कुछ उसने किया है, वो अच्छा भी था वो, लेकिन जब शादी हो गई तो उसको अभी पत्नी के रूप में काम करना शुरू करना पड़ेगा ना। पति की देखभाल करनी पड़ेगी, घर की देखभाल करनी पड़ेगी, बच्चे होंगे तो बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी। इसका मतलब जब आपका रोल बदलता है तो आपको उसके अनुसार काम करना पड़ता है। अभी आपको आईटी ऑफिसर के रूप में काम के लिए लिया और आप हाउसकीपिंग का काम करने लगेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे आपका काम हाउसकीपिंग का नहीं है, आपको आईटी में काम करना है। आप आईटी ऑफिसर हो, आपका क्वालिफिकेशन आईटी ऑफिसर का है। उसी तरह से अगर आपको बताया जा रहा है कि ये भाग्य की बात है, भगवान का नाम का परिचय होना और भगवान का श्रीमद् भागवत का परिचय होना, ये जीवन में पिछले जन्म में किए हुए अनंत पुण्यों का परिणाम है, उसका यह फल है। तो आप बोलेंगे होगा तो क्या करूं? इसका मतलब हम दुर्भाग्य है, ये कई जन्मों के बाद में प्राप्त होता है, एक मनुष्य जन्म के अंदर प्राप्त नहीं होता है। एक मनुष्य जन्म के अंदर आपने अगर कोई पुण्य कर्म किया, कोई भगवान की सेवा में किया, कोई वैष्णवों की सेवा में किया, अच्छा कार्य किया, तो इकट्ठा होने के बाद में उसके फल के स्वरूप ऐसे आपको मौका मिलता है। तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में नौकरी करना केवल नौकरी के लिए नहीं है, ये कोई और प्राप्ति के लिए आपको दिया गया है। नौकरी का तो बहाना है, लेकिन भगवान को मिलने का यहाँ पर व्यवस्था बना के रखिए। जीवन को एक स्तर से दूसरे ऊंचे स्तर पर लेके जाने की यहाँ पर व्यवस्था है, केवल नॉलेज के रूप में, केवल एक ज्ञान के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है और समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूं। एक बार आपको समझ में आया ना कि आप भगवान के बालक हैं, तो एक्चुअली आपके जीवन की सब समस्याएं उधर ही खत्म होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, पूरे अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, सब सृष्टि का मालिक है, वो आपका पिताजी है। बाइबल में क्या लिखा है कि जो व्यक्ति नम्रता से समझता है, नम्र होकर समझता है कि मैं भगवान का बालक हूं, भगवान का धाम उसी का हो जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द मीक एंड द हम्बल शल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान का धाम उन्हीं का होगा जो नम्र बनकर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। कितनी बड़ी बात है देखो। और नम्र बनकर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए ना धनी होने की जरूरत है, ना पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, ना सुंदर होने की जरूरत है, ना ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की जरूरत है, ना शक्तिशाली होने की जरूरत है, ना पावर की जरूरत है, पोजीशन की जरूरत है, कोई किसी की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आप में से कितना भी अनपढ़ बुद्धू या बहुत बुद्धिमान, बहुत धनवान, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पावरफुल होगा या नहीं होगा, फिर भी आप नम्र होकर भगवान को अपने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकते हो। कर सकते कि नहीं कर सकते, ये भाग्य यहां पर मिलता है। और ये अस्पताल क्यों बनाया गया है? ये अस्पताल कृष्ण भावना, भगवत भावना लोगों को देने के लिए बनाया गया है। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा श्रीमद् भागवत की। हाँ, रामायण में भी ऐसी कहानी है और भागवत में भी ऐसी कहानी है। वो कहानी ऐसे कि एक कन्या थी, उसका नाम था देवाहुति। वो देवाहुति ब्रह्मा का एक पुत्र था, उसका नाम था स्वयंभुव मनु। स्वयंभू ब्रह्मा का पुत्र, स्वयंभुव मनु, वो विश्व का राजा था ब्रह्मा के बालक के रूप में। और उसको बहुत सुंदर कन्या थी, उसका नाम था देवाहुति। और वो देवाहुति कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतने अच्छे गुण संपन्न थी कि वो जो बचपन में जब ये थोड़ी देर जवान हो रही थी, एकदम बालिका भी नहीं, एकदम जवान भी नहीं, थोड़े बीच की अवस्था में थी, 12-13 उम्र की थी, तब वो छत पे खेला करती थी अपने महल के। तो उसका सौंदर्य देखने के लिए आकाश से, स्वर्ग लोक से विमान में बैठकर देवता लोग आते थे। और ऐसा वर्णन आया है कि उनका सौंदर्य देखते हुए जब वो खेल रही है, अपने गेंद से खेल रही है, यहाँ वहाँ डोल रही है छत पे, बालिका है ना छोटी सी, लेकिन उसका सौंदर्य देखकर देवता लोग विमान से गिरते थे नीचे बेहोश होकर, इतनी सुंदर थी वो। जिसका पैर कभी जमीन पर लगा नहीं था, हमेशा मखमल के ऊपर चलती थी वो, इतना उसको फूल की तरह राजकुमारी के रूप में बड़ा किया गया था। लेकिन स्वयंभू मनु जो थे वो बड़े भक्त थे भगवान के, राजा थे, बड़े पावरफुल थे, लेकिन भक्त थे भगवान के। तो वो जानते थे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब ये कन्या विवाह का योग्य हुई तो पिता ने सोचा कि इसको ऐसा पति मिलना चाहिए जो उसको भगवान के धाम में पहुंचा सके, इस जीवन के अंत में, हाँ, इस जीवन के अंत में जीवन का उद्देश्य प्राप्त कराने वाला पति होना चाहिए। तो वो जंगल में गए। अभी राजा होगा तो क्या देखेगा वो, कि कोई राजपुत्र होगा अच्छा सुंदर शूरवीर, हाँ, बहुत अच्छे राजा का पुत्र होना चाहिए, वो अपने बराबरी का होना चाहिए, है ना। उसके अलावा उसने क्या देखा, कौन व्यक्ति ऐसा है जो मेरे बच्ची को निश्चित रूप से इस जीवन में भगवान के रास्ते पर रखकर जीवन के अंत में भगवान के धाम में ले जाएगा, उतना काबिल होना चाहिए वो। तो वो जंगल में गए और एक मुनि से मिले, कर्दम मुनि, जो कई वर्षों से जगन में तपस्या कर रहे थे, बड़े ज्ञानी थे वो, भगवान के भक्त थे। झोपड़ी में जाकर राजा ने चप्पल उतार कर दंडवत किया, उसको दंडवत किया और कहा कि मैं आपको मेरी कन्या देना चाहता हूँ विवाह में। तो कर्दम मुनि ने राजा की इच्छा देखकर हाँ कर दिया और उनका विवाह कर दिया। अभी आप सोच सकते हो, राजा की कन्या, इतने फूल जैसे पाला था उसको, इतने ऐश्वर्य में, धन संपत्ति में, तो शादी को कहाँ गई वो, झोपड़ी में गई, जंगल में, ना कोई दास दासी है, ना कोई पंच पकवान है, ना कोई जूता है, ना कोई अलंकार है, ना कोई वस्त्र है, ना कोई ऐसा कोई माहौल है जिससे राजा की कन्या के योग्य वहाँ पर कोई स्थिति हो। शादी करके तुरंत तपस्या में बैठ गए। तो उसने ऐसा नहीं बोला, अरे क्या महाराज जी, ना नौकरी करते हो, ना पैसा कमाते हो, क्या करते क्या हो, मैं तो राजकन्या हूँ, मेरे लिए कुछ अच्छा भोजन की व्यवस्था करो, अच्छे वस्त्र की व्यवस्था करो, दिन भर ध्यान करते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। उसने क्या क्या बताया, अपने पति का मूड क्या है वैसा अपना मूड बना लिया तुरंत। ऐसे प्रभु रामचंद्र का सीता जी के साथ विवाह हुआ था, तब दोनों राजकुमार राजकुमारी थे, है ना। जब उनका विवाह हुआ, राजकुमार राजकुमारी का विवाह हुआ और वो अयोध्या में आए और राजकुमार राजकुमारी के रूप में रह जाते थे, युवराज की पत्नी के रूप में रह रही थी, वो पूरे ऐश्वर्य के साथ सुख था पूरा, राजा बनने वाले थे वो, कल उनका राज्याभिषेक होने वाला था, इतना सब उनका गौरव था कि युवराज की पत्नी है ये, कल राज पत्नी बन जाएगी, रानी बन जाएगी। और उस रात में तय हुआ कि वो जंगल में जाएगी, मतलब राम को कैके ने भेज दिया वनवास को। तो राम ने कहा कि मत आओ तुम, जंगल में मत आओ, तुम तो राजकुमारी हो, जंगल में कैसे रहोगी, उधर तो प्राणी रहते हैं, राक्षस रहते हैं, पत्थर रहते हैं, कांटे रहते हैं, क्या क्या रहता है, कंदमूल खाना पड़ता है, कोई पका हुआ खाना नहीं मिलता है, कोई गद्दा नहीं सोने को मिलता है, नंगे पैर चलना पड़ता है, तुम यही रहो, मेरे माता पिता की सेवा करो, मैं वनवास करके लौट के आऊँगा। तो सुता कहती है कि दुख में और सुख में साथ रहने का वचन मैंने आपको दिया था शादी के समय, वो कोई ऐसा ही टाइम पास में नहीं दिया था मैंने, वो मैंने गंभीरता से भगवान के सामने, पिता माता के सामने, मेरे पिता के राज्य में, मेरे मायके में, सबके सामने, भगवान के सामने खड़े होकर मैंने व्रत वचन लिया था कि दुख में और सुख में आपके संग में रहूंगा मैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सुख में रहूंगी और दुख में फिर सोचूंगी उसके बारे में, तुरंत निकल गई वो। जो पति का स्थिति है उसके अनुसार अपने आप को जोड़ लिया उसने, पति अगर पेड़ की खाल पहनकर निकले तो भी पेड़ की खाल पहनकर निकली, पति नंगे पैर निकले तो भी नंगे पैर निकल गई, पति ने कंदमूल खाना शुरू किया तो भी वो कंदमूल खाना शुरू किया, पति अगर पर्ण के पत्ते के ऊपर सोने लगे तो पत्ते के ऊपर सोने लगी, जो भी कष्ट उन्होंने सहन किया ये भी इन्होंने सहन किया। कोई ऐसा नहीं कि 50 नौकर हवा दे रहे हैं, कोई चरण दबा रहा है, कोई नहीं, जंगल का राज्य जीवन था वो। तो कर्दम मुनि का भी देवावती ने ऐसा ही सेवा किया, एक रूप होकर, पति के भाव से एक रूप होकर, उसकी स्थिति को देखते हुए, उसके अनुकूल होकर उसने इतने सालों साल सेवा किया, और कभी रात को भी सेवा करनी पड़ती थी, कभी दिन में भी करनी पड़ती थी। पति बड़े तपस्या में बैठे थे, उनको जो भी चाहिए था वो देती थी, उसमें उसका राजकुमारी का सौंदर्य भी नष्ट हो गया, क्योंकि घर में रहेंगे तो इतना रोए बाल करने वाली एक औरत रहेगी, एक श्रृंगार करने वाली रहेगी, एक मेकअप करने के लिए रहेगी, एक स्नान कराने के लिए रहेगी, एक कपड़े को संभालने के लिए रहेगी, कितनी दासियां राजकुमारी के पास हुआ करती थी, उधर तो कोई है ही नहीं, ना भोजन करने वाला है, ना खिलाने वाला, जो मिलेगा वो खाएंगे, एक पंद फूल मिलेंगे तो खाएंगे। इस तरह से वो बहुत ही पतली हो गई, दुबली हो गई, सौंदर्य नष्ट हो गया, उसके बाल झड़ गए, एकदम क्रश हो गई वो। और एक दिन ऐसा सब होने के बाद में एक दिन पति की तपस्या पूरी हो गई, पति यशस्वी हो गए तपस्या में, तो उन्होंने आँख खोली तो देखा तो हमारी राजकुमारी पत्नी इतनी दुर्बल और इतनी कमज़ोर हो गई है। तो उसने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तो तुरंत कर्दम मुनि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा उसकी पूरी कर दी। और क्या परिणाम हुआ मालूम है, उसके पुत्र के रूप में कौन पैदा हुआ कोई जानता है? स्वयं परम भगवान कपिल देव उसके गर्भ में जन्म लिया। कितना बड़ा सम्मान है, देवकी के गर्भ में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, कौशल्या के गर्भ में राम ने जन्म लिया, कितनी बड़ी भाग्य की बात है। हाँ, वो पति की एक रूप होकर जब उसने सेवा किया तो वो भगवान की माता बनने की योग्य बनी, वो भगवान ने उसका गर्भ चुना कि मैं आऊंगा तो इसके गर्भ में लेकर अवतार लूंगा। और फिर पति जंगल में चले गए और फिर उसने पुत्र को जन्म दिया, और वो पुत्र जब बड़ा हुआ, उसको बड़ा भी किया उसने दूध पालन करके, बड़ा होने के बाद में जो पुत्र है वही गुरु बना उनका, और पुत्र के मुख से उन्होंने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की, इसलिए उसका वर्णन जो है श्रीमद् भागवत के अंदर आता है। श्रीमद् भागवत के अंदर केवल वही कथा आती है जो शुद्ध भक्त की होती है। इधर बैठो। श्रीमद् भागवत के अंदर केवल वही कथा आती है जो शुद्ध भक्ति की कथा आती है। कोई कर्मकांड, कोई ज्ञान कांड, कोई सिद्ध कांड, कोई भौतिक प्राप्ति, कोई इसमें नहीं आता है। निरपेक्ष भक्ति जो है अमलम पुराणम के रूप में आती है, उसके अंदर और कोई कथा का एंट्री नहीं है। उसके अंदर इसकी कथा आ गई है एक देवाहुति की, क्योंकि सेवा में एक चरम सीमा, एक आदर्श उसने स्थापन किया। ये मैं सब इसलिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भक्तिवेदांत हॉस्पिटल भी सेवा के लिए खोला गया है। यहां पर कोई भी व्यक्ति पिकनिक मनाने को नहीं आता है। कोई आता है क्या? शनिवार रविवार को छुट्टी है 2 दिन की, तो यहाँ पर ऐसा रिसॉर्ट में आ गए, भक्तिवेदांत रिसॉर्ट। नहीं, यहाँ पर सब लोग परेशान होकर आते हैं, कोई बीमारी है, किसी को कष्ट है, कोई तकलीफ है, सब लोग यहाँ पर एक पीड़ा लेकर आते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो हमारी पीड़ा को नष्ट करेंगे, है ना। कोई भी ऐसा किसी को पता है कि भाई यहाँ पर बीमारी ठीक नहीं होती तो कोई यहाँ पर आएगा क्या? पता है 100% कि यहाँ पर आएगा तो आदमी मरता ही है और वो ठीक नहीं होता है कोई डिस्चार्ज नहीं होता यहाँ पर, तो कोई आएगा यहाँ पर? जो फिर भी लोग आ रहे हैं, इतनी 1000-1200 लोग दिन में यहाँ पर आते हैं, कोई ओपीडी में आता है, कोई भर्ती होने को आता है, कोई इमरजेंसी में आता है, सब लोग क्या सोचते आते होंगे, मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, जो आम आदमी बाहर का जो डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर है, फैमिली फिजिशियन है, वो ठीक नहीं कर सकता है उसको, इसलिए हम भक्ति विधान में आएंगे। तो यहाँ पर जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, इतनी सारी बड़ी व्यवस्था है, उसमें मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा लगता होगा तो आते ना इधर। और एक आदमी को ठीक करने के लिए मेडिकल साइंस ने अभी रिसर्च किया है, एक हॉस्पिटल में एक आदमी जब प्रवेश करता है भर्ती होने के लिए तो उसको सेवा करने के लिए कितने लोग लगते हैं मालूम है आपको? 133 लोग लगते हैं आपको लगता है डॉक्टर जरूरी है, नर्स जरूरी है, वार्ड बॉय जरूरी है, बहुत हो गया, और क्या चाहिए? लेकिन साथ साथ में सिक्योरिटी की भी जरूरत है, जो वहां ही से देखेगा आपको कि सीरियस आदमी है तो तुरंत वो भागेगा और स्ट्रेचर लेके आएगा, और तुरंत लेके वो स्ट्रेचर लेके भी भागेगा और उसको आईसीयू तक पहुंचा के आएगा, वो डॉक्टर के हाथ में छोड़ के आएगा, वो तो भी सेवा में है ना। वो फिर ड्राइवर भी है जो एम्बुलेंस चलाता है, फिर वार्ड बॉय भी है, फिर आया बॉय भी है, फिर नर्स भी है, नर्स के असिस्टेंट भी है, एड नर्स भी है, कैजुअल्टी ऑफिसर भी है, फिर ऊपर का डॉक्टर भी है, फिर आईसीयू डॉक्टर भी है, वार्ड का डॉक्टर भी है, पैथोलॉजिस्ट है, एक्सरे डॉक्टर है, एक्सरे की नर्स है, एक्सरे का टेक्नीशियन है, कितने लोग हैं देखो आप। एक्सरे भी निकालेगा, ब्लड भी देगा, उसका पाँव टूटा तो प्लास्टर भी लगाएगा तो उसको वो टेक्नीशियन रहेगा, फिर फार्मेसी है, फिर फार्मेसी का ऑफिसर है, फिर परचेस करने वाला है, फिर दवा देने वाला है, कितने लोग हैं? एवरेज में 133 लोग इसमें लगते हैं एक आदमी को बीमार अवस्था से ठीक करने के लिए। अगर 133 में से एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो पेशेंट ठीक होने में सहायता नहीं हो सकती है ना। हमारे हॉस्पिटल में एक बड़े व्यक्ति आए थे एक बार, उनको कुछ हृदय की बीमारी थी और उनका ऑपरेशन जसलोक में हुआ था, और जसलोक जाने के पहले और जसलोक जाने के बाद वो हमारे यहाँ पे एडमिट थे, तो उनका एसी रूम था और उनके एसी रूम से हमेशा बरसात की तरह पानी गिरता था, एसी से सब कुछ ठीक था लेकिन एसी से उनके बिस्तर पर पानी गिरता था। अभी सब कुछ ठीक था उनका, बाकी सब अच्छा था, लेकिन इतने परेशान थे वो, क्योंकि 3-4 बार एसी वाला आदमी गया लेकिन फिर भी वो एसी रिपेयर नहीं कर सका। एंड में हमने बोला सर हम आपके बिल में से कुछ पैसा काटेंगे हम लोग, सॉरी आपका एसी ठीक नहीं हो सका। एंड तक एसी बदली किया फिर भी दूसरे बारिश बंद नहीं हुई है ना, अभी परेशानी हुई ना उसको, दिल का मरीज है बेचारा, वो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, सर्दी हो सकती है उसको, तो दिल के लिए अच्छा नहीं है वो। मुझे एसी बंद कर दिया तो फिर पंखा का आवाज़ टक 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 चालू हो गया तो रात को नींद नहीं आएगी उसको, फिर परेशान है वो। और सुबह उठ के टॉयलेट में गया तो वो चौकअप हो गया उधर, टॉयलेट पूरा भरा हुआ है, फिर प्लम्बर आएगा तो साफ करेगा तो भी उसको अच्छा लगेगा, भाई चलो नेक्स्ट टाइम लैट्रिन जा सकते हैं। तो लैट्रिन वाले की सेवा भी इम्पोर्टेंट है, चौकअप वाले निकालने की सेवा भी इम्पोर्टेंट है, साफ करने वाली सेवा भी इम्पोर्टेंट है। तो इतने लोगों की सेवा से एक आदमी ठीक होता है, तो आप समझ सकते हो कि आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। और अभी आप ये सोच लो कि इसमें से 133 में से एक भी आदमी को मरीज की सेवा करने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सोच लो ऐसा। आप सब लोग भी उसी 133 के अंदर आते हो बाय द वे, हाँ, और आप में से किसी को मरीज में इंटरेस्ट नहीं है, खाली तनख्वाह में इंटरेस्ट है, नौकरी है, क्या करना है, नौकरी चाहिए हमको, पैसा चाहिए, लेकिन ये काम हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, हो सके तो हमको बिना काम का पगार मिला तो अच्छा रहेगा, ऐसा आप मन में रहेगा। और सब लोग ऐसे रहेंगे समझो, फार्मेसी से लेके सिक्योरिटी से लेके नर्स से लेके डॉक्टर से लेके सब लोग हर रोज मरीज को देख के उनको परेशानी होती है, ऐसे लोग रहेंगे तो मरीज की क्या स्थिति होगी, सोचो आप। वो इसको देखेगा उम्मीद से, उसको भी इंटरेस्ट नहीं, वो डॉक्टर को देखेगा उम्मीद से, उसको भी इंटरेस्ट नहीं, हाँ वार्ड बॉय साफ करने को आएगा उसको भी इंटरेस्ट नहीं, वो बोलेगा सर इधर भी सर साफ करो, एक बहुत गंदा है, वो देखेगा अपने इसको निकल जाएगा अपनी तरफ साफ करके, तो मरीज को कितनी परेशानी होगी, मन से कितनी परेशानी होगी, तन से तो हो रही है उसको, उसके लिए तो आया है इधर, वो भी ठीक नहीं होगा, मन से भी परेशान हो जाएगा वो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर न केवल उसकी बीमारी ठीक करने को आए हैं, हमको यहाँ पर उनको बीमारी ठीक करते करते भगवान से भी इंट्रोड्यूस करना है, ये हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ का, टू गिव हिम नॉलेज, उसको ज्ञान देना भी हमारा पर्पज है। तो अगर वो स्तर पे उसको बेनिफिट देना है तो पहले उसका सेवा तो अच्छा करना पड़ेगा ना अपने को, समझो आपने सिस्टर ने रॉन्ग दवा दे दिया उसको, डॉक्टर ने रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया उसको, और सिस्टर ने और तीसरा दवा दे दिया उसको गलती से, होता है ना कभी ऐसा, जानबूझ के नहीं होता है लेकिन गलती से कभी हो जाता है, लेकिन समझो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, इधर भी रॉन्ग गया उधर भी रॉन्ग हो गया, और फिर हमारी रति के लिए माता जी वहाँ गई और हरे कृष्णा किया, क्या आप भगवत गीता सुनना चाहेंगे, मतलब भगवत गीता को फेंक दो यहाँ से, एक तो आपके डॉक्टर लोग दवा सही देते नहीं है, नर्स लोग आके रॉन्ग दवा देते हैं, वो प्लम्बर आके चौकअप निकालता नहीं है, और अभी आप गीता सुनने के आए, गेट आउट फ्रॉम दिस रूम, ऐसा बोलेंगे, अभी उसका कोई गलती नहीं है, वो तो भगवान का परिचय कराने के लिए आई थी, लेकिन जो बेसिक सेवा उसकी ठीक से नहीं हुई तो वो ऑलरेडी गुस्से में है, तो क्या भगवत गीता सुनेगा वो, तो भगवान का मैसेज कब सुनेगा वो, जब वो आप लोगों की बेसिक सेवा से प्रसन्न हो जाएगा, बीमारी से ठीक भी होने लगेगा, तब जाके वो बोलेगा ठीक है अब मेरे को टाइम है आप सुना सकते हो, रिसेप्शन आएगा, रिसेप्शन पे आएगा और वहाँ पर उसको ठीक से गाइड नहीं किया गया कौन सा पेपर भरना है और कहाँ से पैसा भर के कहाँ से पेपर बनाना है, डॉक्टर कौन से नंबर पे ओपीडी में बैठने वाला है, ये गाइडेंस नहीं मिला उसको, बहुत परेशान हो गया, आखिर में मिला और फिर एडमिट हो गया, फिर भी वो याद रखेगा कि मेरे को रिसेप्शन में ना बहुत तकलीफ हुआ था, जो जो उसको मिलने का आएगा बोलेगा साहब सब कुछ ठीक है, रिसेप्शन सही नहीं है आपका, बोलेगा ना समझो सब कुछ ठीक हो गया उसका, एकदम अच्छी तरह से डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन बिलिंग में रॉन्ग बिल लगा दिया उसके ऊपर डबल, एक बार ईसीजी किया दो बार चार्ज लगा दिया, एक बार एक्सरे किया दो बार चार्ज लगा दिया एक बार बैंडेज किया तो चार बार चार्ज लगा दिया बैंडेज का, तो वो सबके ऊपर खुश है लेकिन जाते वक्त सबको गाली देके जाएगा वो, क्योंकि सबसे आखिरी हिस्सा क्या होता है एडमिशन के अंदर, डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बिल वो बिल बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि वो जेब में कष्ट होता है ना उससे, इसलिए बिल जो है ना वो अगर सही नहीं किसी ने दिया, गलत कर दिया, और पेशेंट ने ढूंढ के निकाला कि ये गलती है, और वो गलती निकालने के बाद भी बिलिंग के असिस्टेंट ने उस पर आर्ग्यूमेंट किया नहीं सर सही है, बोलेगा नहीं गलत है मैंने एक ही बार बैंडेज किया था, नहीं नहीं दो बार किया था, हमारे पास एंट्री है उसकी, बोला आपकी एंट्री गलत की गई है, आपके लोगों ने दो बार एंट्री गलत सी गलती से की गई है, तो अगर झगड़ा हो गया उधर, तो जितना पहले सब किया लोगों ने अच्छा सेवा, नर्स ने डॉक्टर ने, सब पे पानी फिर जाएगा। इसलिए केवल आपको अपनी सेवा करना पर्याप्त नहीं है, सब लोगों को अपनी अपनी सेवा पर्याप्त और पूर्णता से करना चाहिए, तब जाकर हमारे जो स्पिरिचुअल केयर के लोग जाएंगे ना तो तुरंत सुनेंगे उनकी बात, हाँ आपके हॉस्पिटल के लोग कितने अच्छे हैं, नर्स भी अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं, हमारी सोशल वर्कर भी बहुत अच्छी है, हाँ बहुत हेल्प किया हमने, उन्होंने हमको गाइड किया कहाँ से डिस्काउंट मिल सकता है, कहाँ से बाहर से हेल्प हो सकती है, ऐसा हमको महसूस होने नहीं दिया कि हम लोग गरीब है हमारे पास पैसा नहीं है हम भिखारी की तरह यहाँ पर आए हैं, ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया, हम तो गरीब है पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन कितना हमको आदर से समझाया, कितना एक्सप्लेन किया और गाइड किया कि कहाँ कहाँ से आपका पैसा आ सकता है, आपको डिस्काउंट यहाँ से मिल सकता है, पूरा गाइड करके, तो वो रिन्यू हो जाएगा, बोलेगा आपके हॉस्पिटल सब लोग कितने अच्छे हैं, सब लोग यहाँ पर दुखी लोगों का दुख निवारण करने के लिए बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी के आगे जाकर सब लोग क्या कर रहे हैं, दुखी का लोगों का दुख ऐसा कम करूं ये सोच के काम कर रहे हैं, और यही हमारा कल्चर है और होना चाहिए। देखो पैसे के लिए सब लोग काम करते हैं, मैं भी यहाँ पर नौकरी करता हूँ पैसे के लिए, मेरे परिवार को मुझे पालना है, उसमें कोई बड़ी बात विशेष बात नहीं है, सब लोग काम करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी मेहनत करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आप लोग भी कर रहे हैं अच्छी बात है, उसमें कोई विशेष झंडा फहराने की बात को है ही नहीं उसके अंदर, लेकिन अगर कोई नौकरी करने के ऊपर उठकर अगर दर्दियों की सेवा भाव रखता है तो वो विशेष है, भक्ति वेदांत में आके लोग आपको याद किसके लिए रखेंगे कि आपने ट्रीटमेंट दिया और पैसा लिया और डिस्चार्ज कर दिया, इसके लिए याद नहीं रखेंगे। ट्रीटमेंट लिया, डिस्चार्ज किया, दवा दिया, ठीक कर दिया, लेकिन कैसे किया वो, कितना अच्छे तरीके से किया, कितना प्रेम से किया, कितना दिल लगा के किया, कितना त्याग भावना से किया। ऐसा नहीं देखा कि पाँच बज गए हैं, पंच करना है, जाना है, पेशेंट बेहोश हो, अच्छा हो, मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट ड्यूटी वाला देखेगा उसको, नहीं, वो अपने आप को आगे एक्सटेंड किया उन्होंने। तो लोग बोलेंगे विशेष बात है, मैं हिंदू जामे में भी गया था, मैं जसलोक में भी गया था, मैं उधर भी गया था, इधर भी गया था, लेकिन भक्ति विधान में पैसा भरा मैंने, बिल भरा, सब कुछ किया, सब कुछ वैसे नॉर्मल हुआ, लेकिन सेवा इतनी अच्छी हुई। कभी ना कभी भी बीमार पड़ेगा ना, तो कितना भी बड़ा बीमार होगा तो भक्ति विधान में ही जाएगा, ऐसा अगर वो बोलेगा मतलब आपके अंदर कुछ विशेष बात है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, देखो एक दूसरी एक हद की बात है, एक लास्ट लिमिट की बात है। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग कि हमारे पिताजी यहाँ पर आए, एकदम बहुत सीरियस अवस्था में आए थे, 15 दिन रहे आईसीयू में, बहुत बड़ा बिल हुआ उसका, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ और बहुत बड़ी बड़ी दवाएं, 15,000 का एक एक इंजेक्शन लगाया गया उनको, लेकिन एंड में मर गए वो। और ऊपर आगे क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ भक्ति विधान में आए थे हम लोग, वो तो जाने वाले थे लेकिन भक्ति विधान में गए, बहुत अच्छा हुआ। हमारे वैदेही मैडम को पूछो आप, उसने मुझे खुद आके बताया था कि मेरे पिताजी भक्ति विधान में गुजर गए, बहुत 11 साल पहले की बात है। अभी जो एकादशी आई थी ना परसों, वरुथिनी एकादशी, उस दिन 11 साल हो गए उनको गुजर के, तो तब भी उन्होंने कहा था, अभी भी कह रही है कि मेरे पिताजी गए, मुझे बहुत दुख हुआ इस हॉस्पिटल में गुजर गए वो, लेकिन यहाँ पर गुजर गए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो उनको केयर मिला वो और कहीं मिलता नहीं था, जो स्पिरिचुअल केयर, जो डेथ केयर उनको मिला, इतना सम्मान से उनको सबको इन्वॉल्व करके, सबको हाथ लगाने को, उनको सबको सेवा में सम्मिलित करके, मेरे पिताजी को जिस प्रकार से इत्मीनान से सम्मान के साथ में विदा किया गया, वो बाहर कहीं होता नहीं था। इसलिए गए वो दुख है, लेकिन यहाँ गए उसका भी अच्छी बात है कि यहाँ गए। तो ऐसा रिपोर्ट हमारा सब लोगों का आना चाहिए कि लोग बीमार है, दर्द है, उनको तकलीफ हो रही है, कष्ट भोग रहे हैं, फिर भी वो ये सोच रहे हैं कि कष्ट भोगने का समय आता है तो भक्ति विधान में आएगा तो अच्छा है, क्योंकि ये लोग बहुत दयालु हैं, अपनी सेवा बहुत प्रेम से और करुणा से करते हैं तो अच्छा रहेगा ना। क्योंकि जब हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, समझो गलती से कहीं गर्मी का मौसम है, सब लोग घूमने जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, मनाली जाते हैं, महाबलेश्वर जाते हैं, समझो वहाँ पर बीमार पड़ गए, अचानक गिर गया कोई इधर खेलते खेलते और फ्रैक्चर हो गया बच्चे का पाँव, और कहीं लोकल हॉस्पिटल जाना पड़ा वहाँ पर, तो आपकी अवस्था वैसी होगी जैसे यहाँ आने वाले मरीज की होती है। कैसे होती है? असहाय अवस्था होती है ना, उसको पता नहीं है नर्स कौन आने वाली है, डॉक्टर कौन आने वाला है, कोई पहचान का नहीं है, क्या होगा अगले 4 दिन में, डॉक्टर ने बोला है 4 दिन भर्ती होना पड़ेगा, 4 × 24 96 घंटे में क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा खाने को, क्या कौन बात करेगा, कैसे डॉक्टर कितनी सुई लगाएगा और नर्स कैसे बात करेगी, हंसेगी नहीं हंसेगी, वार्ड बॉय क्या करेगा, पानी देगा कि नहीं देगा, कितने प्रश्न उसके मन के अंदर होंगे, क्योंकि वो असहाय है अभी, वो बीमार अवस्था में अपने आप को उसको सौंप देना पड़ रहा है आपके हाथों में, 133 लोगों के हाथ में उसको देना पड़ रहा है अपने आप को, बिना पहचान के, वो भी बीमार अवस्था में, तो उसकी कैसी अवस्था होती है, असहाय अवस्था, वैसी आप लोगों की होगी महाबलेश्वर के अंदर। तब आपको समझ में आएगा कि एक नर्स का अच्छा होना, हंसते हुए ट्रीटमेंट देना, करुणा के साथ, दया के साथ दवा देना, अच्छी तरह से बात करना, पूछे हुए प्रश्न का अच्छा जवाब देना, थैंक यू प्लीज बोलना कितना इम्पोर्टेंट है, तब ये आपको मरीज बन के समझ में आएगा। इसलिए हॉस्पिटल के इंडस्ट्री में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी मरीज बनना ज़रूरी है, मरीज बनकर एडमिट भी होना ज़रूरी है। मैं आपको शाप नहीं दे रहा हूँ ये एक ज़रूरत है उस मरीज की भावना को समझने के लिए कि वो कौन सी अवस्था में होता है। एक गरीब व्यक्ति समझो बहुत ज़रूरतमंद है, उसका बेचारा बच्चे ने जल गया बच्चा बेचारा उसका, और मिडिल क्लास आदमी था, किसी को बंस हो गया ना बंस, तो पूरा आपका संपत्ति खाली करने के लिए एक बंस काफ़ी है, तो वो जले हुए बच्चे को ठीक करने के लिए बहुत लाखों रुपया, घर भी बेचना पड़ता है कभी कभी, हमने देखा है हॉस्पिटल में यहाँ पर। और समझो वो हमारे मैडम के पास गए, हेतल वर्मा के पास में, और उसको बहुत सहानुभूति से, बड़े प्रेम से देखभाल किया गया, पूछताछ की गई, हर तरफ से उसको हेल्प करने का प्रयास किया, तो उसको कितना अच्छा लगेगा कि मैं तकलीफ में था, कष्ट में था, मेरे पास पैसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इलाज किया गया, गाइडेंस किया गया, अच्छी तरह से मुझे संभाल के रखा गया और मेरे को गाइड भी किया गया कहाँ कहाँ से हेल्प हो सकती है। तो कहने का तत्पर क्या है कि सेवा भाव का हमारा कल्चर है और हम सब लोग यहाँ पर नौकरी करते हुए ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर सेवा भाव बहुत ज़रूरी है। हम लोग किसी होटल में काम नहीं कर रहे हैं, एयरलाइंस में काम नहीं कर रहे हैं, लकड़ी और स्टील के कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कंपनी में काम कर जहाँ पर इंसान जिसको भावना होती है, वो इंसान बीमार होकर यहाँ पर आता है उम्मीद और विश्वास के साथ कि यहाँ पर मुझे ठीक किया जाएगा अच्छी तरह से, मतलब आवर्स इज सर्विस इंडस्ट्री। और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर किसी को सर्विस की भावना नहीं है तो उनको इस पर काम ही नहीं करना चाहिए, पेशा बदलना चाहिए। हमारा एक कॉलेज में डॉक्टर था एमडी, उसने एमडी होने के बाद में कस्टम ऑफिसर का जॉब ले लिया एयरपोर्ट पे, अभी वो कस्टम ऑफिसर के रूप में अंधेरी एयरपोर्ट में काम करता है, नहीं करना है उसको मेडिकल, ठीक है ना। लेकिन अगर मेडिकल इंडस्ट्री में काम करना है और सेवा की इच्छा नहीं है तो मतलब आप बड़ा पाप कर रहे हो। जहाँ पर सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर हमको सेवा भाव कर इच्छा ही नहीं है। अरे बोलते हैं कल नाइट में गया था, क्या रे चार पेशेंट आए, राइट पूरा बिगाड़ दिया मेरा। तो हम ऐसे लोगों को पूछते हैं कि आप डॉक्टर बने क्यों, आप कोई बिजनेस कर लेते अपना, कोई कंप्यूटर का पार्ट बेच लेते, मोबाइल बेचते, हाँ बड़ा बिजनेस कर लेते, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कर लेते। वहाँ पर कोई बीमार नहीं आता है, सब खरीदने को बेचने को आते हैं, कोई वहाँ पर इमरजेंसी नहीं होती है। इमरजेंसी आपके पास होती है, यहाँ पर मरीज जैसा दिल हाथ में लेके मरते मरते आता है, आप उसको अच्छा करके चलाते भेजते हो घर पे, हाँ ऐसे अवस्था में यहाँ पर लोग आते हैं। और अगर यहाँ पर लोगों को केवल नौकरी में और कोई तनख्वाह में इंटरेस्ट है तो कितनी गलत बात है ना। तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल वो सेवा भाव के लिए बनाया गया है, इसलिए आप लोगों को विनती है कि वो सेवा भाव को अपने अंदर रखो, मरीज के अंदर अपने आप को देखो कि मैं अगर उसमें होता उस अवस्था में तो मेरी क्या स्थिति होती। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ को कोई बीमारी होती, हमारी अभी एक गुरु बहन है, हाँ 42 ईयर्स की है, वो भी बीएससी नर्स है लेकिन घर में हाउसवाइफ है, अभी उसको लास्ट स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो 6 साल का एक बच्चा है और 12th में उसकी लड़की है। अगर वो आपके पास ट्रीटमेंट को आती है तो आपको समझना चाहिए कि उसके मन में कितने दुख है, कितने प्रकार की चिंताएं हैं, कितने प्रकार के कष्ट हैं, कितने दिन जियोगी मालूम नहीं है, बच्चे का क्या होगा उसकी चिंता है, लड़की का कैसा होगा चिंता है, पति का कौन संभालेगा उसकी चिंता है, इतना ट्रीटमेंट का खर्चा हो रहा है वो खर्चा कहाँ से आएगा उसकी भी चिंता है, और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगी उसकी भी चिंता है। कितने प्रकार की चिंता एक व्यक्ति में मन में हो सकती है। अगर वो गंभीर अवस्था में होता है तो क्या मेरा पति संभाल पाएगा मेरे बच्चों को मेरे बाद में, क्या मेरा बिल भर पाएगा कि नहीं, क्या कितने प्रकार की चिंताएं हो सकती है पता नहीं है, थोड़ी बहुत आपको मैंने बता दिया। और ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर आईसीयू में 15 बेड हैं, उधर एनआईसीयू में 12 बेड हैं, उसमें सब लोग सीरियस लोग रहते हैं, और इधर ऑपरेशन थिएटर में रोज 10-15 ऑपरेशन होते हैं, वो भी सीरियस अवस्था में होते हैं, और बाकी लोग टाइफाइड मलेरिया कीमोथेरेपी किसका किसका क्या क्या चलते रहते हैं। हर आदमी अलग अलग विविधता के कष्ट के अंदर है और सब लोग आपको देख रहे हैं कि ये मुझे पानी देगी, ये मुझे दवा देगी, ये मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगी, ये मेरा टेस्ट कराएगी, ये मुझे हेल्प कराएगी, ये मुझे गाइड करेंगे, ये मुझे काउंसलिंग करेंगे, ये मेरे को प्लम्बिंग का हेल्प करेंगे, हाँ हर जगह उम्मीद रख के आते हो। और कोई व्यक्ति आपसे कभी सेवा की उम्मीद रखता है तो ये आपका भाग्य का लक्षण है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये मत समझना कि क्या है मेरा प्रॉब्लम है, सब लोग मेरे को तकलीफ परेशान करने के लिए आते हैं, सब लोग मेरे को हेल्प मांगने को आते हैं। अरे हेल्प मांगने को आपके पास आना ये आपके पूर्व पुण्य का परिणाम है, तो आप हेल्प करने के योग्य हो, आपने ऐसा कोई क्वालिफिकेशन, ऐसा कोई योग्यता, ऐसा कोई डिग्री हासिल किया कि लोग आपको उम्मीद कर सकते हैं कि ये मुझे हेल्प करेगा। एक डॉक्टर को लोग सम्मान क्यों देते हैं, समझे आपके पड़ोस में कोई नर्स रहती है तो उसका सम्मान क्यों करते हैं, पता नहीं बीच रात में कभी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत मुझे हेल्प करेगी, कोई इंजेक्शन लगाई कोई तुरंत कोई मेडिकल काम कर सकती है, डॉक्टर आने के पहले प्राइमरी हेल्थ कर कुछ कर सकते हैं ना, उसको मालूम है वो दिन रात अपने इसी पेशे में रहती है, और रात को मुझे कुछ हो गया, मेरे पिताजी लैट्रिन में गिर गए बीच में रात में, तो नर्स कुछ कुछ कर सकती है, किसको बुलाना उसको पता है, क्या करना पता है, प्राइमरी एड दे सकती हो। आपको भी बहुत सम्मान करते होंगे क्योंकि आप हॉस्पिटल में आए भाई के रूप में काम करते हो, आपको भी थोड़ा तजुर्बा है, आपने देखा है क्या करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, इसलिए आपके लोग आपकी बिल्डिंग में सम्मान करते होंगे। यहाँ तक कि आप रिसेप्शनिस्ट हो तो आपका भी सम्मान करेंगे क्योंकि आपका हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट हो, कभी कुछ बीमार हो गए तो इसको पता है डॉक्टर कौन कभी कौन से हॉस्पिटल में अच्छा है, कब आता है, कहीं नहीं आता है, कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करना है, सब पता है उसको, तो आपको वो तुरंत पूछेंगे। तो ये मत समझना कि ये दुर्भाग्य हमारा है, क्या बीच रात में आपके लोग आके तंग करते हैं हमको। देवा होते नहीं सोचा नहीं, अरे पति मिला तो कैसा मिला, मेरी उम्मीद थी कि मैं राजकुमार के घर पे जाऊंगी और रथ में बैठकर यात्रा करूंगी, तो जंगल में बैठकर मुझे सेवा कंदमूल खाकर रहना पड़ रहा है। लेकिन उसने अपना भाग्य समझकर पति का सेवा किया, तब उसको पता नहीं था कि इसकी मैं सेवा करूंगी ना तो भगवान मेरे गर्भ में आएंगे, ऐसा उसको पता नहीं था, उसने केवल पुत्र की मांग की थी। लेकिन पति ने अपने आध्यात्मिक बल के अनुसार उसको भगवान उसका पुत्र बनाया, भगवान उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया, तब उसको पता नहीं था कि ये ऋषि की सेवा करूंगी मैं पति के रूप में और दुबले हो जाऊंगी पतले हो जाऊंगी तो उसके फल के रूप में मुझे, ऐसा पहला लिखा नहीं था, उसको कोई बता नहीं था कि इसका ऐसा ऐसा होने वाला है। उसने निरपेक्ष भाव से पति की सेवा की अपने एक अच्छे पत्नी के रूप में। उसी तरह से आपको एक अच्छे नर्स के रूप में, एक अच्छे स्टाफ के रूप में निरपेक्ष भावना से मरीज की सेवा करनी चाहिए, ये सोचकर नहीं कि आगे धन मिलेगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा, मेरी भी मोटरसाइकिल हो गई, मेरी भी चार व्हीलर नैनो हो गई, हाँ ये सोचकर नहीं करना है अपने को। आपके क्या योग्यता है उसका फल भगवान आपको जरूर देंगे, निश्चित रूप से देंगे, बिना किसी संकोच के। भगवान कभी भी किसी को उपहार देने में संकोच नहीं करते, जो योग्य है उसका वो तुरंत उसका फल दे देते उसको। इसलिए मरीज का आदर कीजिए, मरीज का हृदय से और भाव से सेवा करना जो है ना, ये हमारा कर्तव्य है। और जो व्यक्ति दर्दी लोगों का दर्द निवारण करता है वो भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है, और उसको जब दर्द होगा तो 50 लोग आएंगे आपके सामने खड़ा होकर आपका दर्द निवारण करने के लिए, क्योंकि आपने अपने जिंदगी में दिल से अनेकों लोगों का, इसका गिनती नहीं है, इतने लोगों का दिल से दर्द निवारण किया है, तो भगवान आपका दर्द निवारण नहीं करेंगे। समझो आप टिम्बकटू में घूमने गए थे, टिम्बकटू एक ऐसा दूर देश है, कोई जानता नहीं उस देश को, बहुत दूर है, और वहाँ पर आप घूमने गए पिकनिक मनाने के लिए छुट्टियों में, और वहाँ बीमार पड़ के आप मर रहे हो समझो, तो वहाँ पर भी भगवान आपके भक्तों को भेजेंगे उधर आपको सहायता करने के लिए, तो भगवान क्या नहीं कर सकते। अपना दर्दियों का सेवा करने वाला व्यक्ति अगर कहीं अनजान जगह पर जाकर बीमार पड़ता है तो भगवान वहाँ पर भी किसी को खड़ा कर देंगे आपके लिए, उनकी शक्ति है वैसे। आप अपना काम करो तो भगवान अपना काम करेंगे, और वो काम करते समय मरीज को सम्मानपूर्वक ट्रीटमेंट दे दो, ऐसा नहीं उधर बैठो बोला ना आप ज़्यादा बड़बड़ मत करो, जितना दवा लिया उतना ले लो, ज़्यादा पूछने का काम नहीं, चुपचाप सो जाओ, मतलब आप दवा दे रहे हो उसको लेकिन आप सम्मान नहीं कर रहे हो उसका। हाँ, जैसे बूढ़े माँ बाप को बच्चा कैसे बात करता है, क्या कटकटे रहो तुम्हारी, ये दवा खा के सो जाओ ना, काहे को इतना खर्चा तो हो रहा है, चुपचाप रहो उधर, दिमाग मत खाओ मेरा। ट्रीटमेंट दे रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, लेकिन ऐसा खाना खिला रहे हैं और ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि उसको लगे कि मर जाना अच्छा है उससे, ऐसा माँ बाप को लगता है कि नहीं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको एक दिन भी और ज़िंदगी मत दो एक्स्ट्रा, आज के आज ही बुला लो, इतना अपमान हमको सहन नहीं होता है, उससे अच्छा भूखा मर जाना, बीमारी से मर जाना अच्छा है। होता है ना तकलीफ बूढ़े आदमी को, बच्चा पूछता है डॉक्टर को कितना दिन जिएंगे, ये छुट्टी निकाल के आना पड़ेगा अभी क्या कि बाद में आ सकता हूँ, ऐसा सुन के पिताजी को लगेगा आप भी मर जाना हार्ट अटैक से अच्छा है, ऐसा पुत्र के विचार में मन में विचार है, इसको लिए दिन रात जाग जाग कर उसको बड़ा किया, बहुत खर्चा कर लोन लेके उसको पढ़ाई किया, अभी बड़ा साहब बनक के गाड़ी में घूमता है और मैं अभी बीमार होकर मर रहा हूँ तो पूछता है छुट्टी लेके आना पड़ेगा क्या। तो ऐसा करने से जब वो बुढ़ा होगा ना तो उसका बच्चा भी उसको यही पूछेगा कब मरने वाला वाला है डॉक्टर साहब अभी आना पड़ेगा क्या। हर एक चक्र जो है ना ऐसे ही घूमता है जीवन का, जो हम देते हैं वही वापस लौट के आता है। हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पर मिस्टर तलवार थे हमारे, राजेश तलवार जी, आप में से शायद होंगे, सेलोमणि होंगी ना, बहुत पहले वो हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे। तो एक दिन हम उनके घर पे भोजन के लिए गए थे शाम को सब डॉक्टर मिलकर, तो उनका पिता माता जी का अमृतसर से फ़ोन आया, तो वो फ़ोन लेने गए। अब फ़ोन पे बात करने लगे, वो अचानक फ़ोन पे बात करते तो रोने लगे, बहुत देर रोते रहे, सब देखते रहे उनको रोते रहे। तो फ़ोन रखा, फिर फ़ोन समाप्त हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ प्रभु जी? वो बोला नहीं, जब भी माता जी का फ़ोन आता है माता भी रोती है, मैं भी रोता हूँ। बाद में बात करते करते ऐसे बात निकली कि अगर मेरे बच्चे मुझे मेरी माता से बात करते हुए रोते हुए देख रहे हैं तो आगे जाकर वो मेरे लिए रोएंगे, मेरी याद करके जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी माता के ऊपर प्रेम करते हुए देखा है, इसलिए वो भी मुझ पर प्रेम करेंगे। अगर मैंने मेरे माता पिता की देखभाल अच्छी तरह से की तो मेरे बच्चे मेरी अच्छी देखभाल करेंगे, ये उसका फल है। अगर मेरे माता पिता को मैंने बहुत अच्छी बुरी तरह से ट्रीटमेंट दिया, बुरा व्यवहार किया उनसे, तो मेरे बच्चे मैं मेरे माता पिता से बुरा व्यवहार करते हुए मुझे देखेंगे और वही करेंगे वो जब वो बड़े हो जाएंगे, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, क्योंकि आपने उनको वही ट्रेनिंग दिया ना, उनके सामने ऐसा ही उदाहरण खड़ा किया है कि बूढ़े माँ बाप से बुरा व्यवहार करना चाहिए, बूढ़े माँ बाप को हमेशा बोझ समझना चाहिए, कब मरेंगे इसका इंतजार करना चाहिए। अगर ये भाव उन्होंने देखा है तो मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी वही सोचेंगे, बुढ़ा कब मरेगा, कितना खर्चा करवाएगा, कितना मेरा बैलेंस पर होने वाला जो पैसा है बचाने वाला वो खर्च करके मर जाएगा। ऐसा अगर हम लोग सोचते रहेंगे तो हमारे बच्चे भी बड़ा होकर वही हमारे से व्यवहार करेंगे। उसी तरह से हमारे पास अगर मरीज आते हैं और सबकी हम लोग बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, हमारे गुरुदेव ने कहा है हमारे लिए कि हमारे कैंप में और हमारे हॉस्पिटल में जो भी आता है उसको अपने माँ बाप की तरह समझो कि मेरी माँ ही भर्ती होने को आई है। तो अगर आपकी माँ भर्ती होने आई है तो आप उसकी कैसे देखभाल करोगे, आपको बताना पड़ेगा क्या? आप सबसे बात करोगे, ऑल 3 नाइट ड्यूटी, कौन कौन ड्यूटी पर है, डॉक्टर कौन है, आरएमओ कौन है, वार्ड बॉय कौन है, मौसी कौन है, सबसे बात करेंगे। मेरी मम्मी एडमिट है, मैं भी मेरी ड्यूटी करके जाकर 2 घंटे में लौट के आ रही हूँ, जरा देखना कुछ है कि नहीं, कुछ तकलीफ हो तो जरा दवाई ला के देना, जो भी करना, 2 घंटे के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई नहीं है, सब लोग जा रहे हैं लौट के आ रहे हैं। आप लोग प्रिकॉशन लेंगे ना अगर आपके माता पिता बच्चा एडमिट हो गया तो? तो ये गुरु महाराज ने एक वाक्य बोल के पूरा स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया कि आए कैंप में अगर कोई दो बुढ़ा बुढ़ी भर्ती होते हैं कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने के लिए, उसको अपने माता पिता के समान समझना और वैसे ट्रीटमेंट देना जैसे आपके माता पिता वहाँ पर आएंगे, तो कैसे आप उनकी आँखों का इलाज करेंगे? सबका इलाज ऐसे ही करना। इसलिए आज भी वो कैंप का जो भाव है ना बड़ा हाई स्टैंडर्ड में है, क्योंकि सब लोग को हम लोग ऐसे बताते हैं आपको कैंप में आना है तो आपको ये समझ के आना होगा कि आने वाले हर एक व्यक्ति आपके माता पिता हैं। और वहाँ पर एक स्वामी जी रहते हैं बरसाने में, वो कहते हैं न केवल माता पिता है वो राधा और कृष्ण है, ये समझकर उनकी आँख ठीक करना। आप पता नहीं उसमें से राधा कृष्ण कौन से रूप में भैंस बदल कर आपकी सेवा करने के लिए वहाँ पर आते होंगे, आपकी सेवा लेने के लिए और आपकी परीक्षा करने के लिए। इसलिए सब लोगों को आप राधा और कृष्ण का स्वरूप समझना और उनकी सेवा करना। और वो स्वामी जी ऐसा कहते हैं, हमारे गुरु जी ऐसा कहते हैं कि वो जो बरसाने में आप भाव से काम करते हो वो भाव भक्ति विधान में अपना लो। यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो भगवान के स्वरूप, भगवान उसके रूप में आपकी सेवा लेने को आ रहे हैं। अगर आपका ये भाव रहेगा, ये आपका चिंतन रहेगा, ये आपका विचार रहेगा, तो जीवन में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके जीवन में जो भी कष्ट आएगा सबके सरफ सबके लिए सब लोग खड़े होंगे आपके सामने, उसी भाव से जिस भाव से आपने लोगों का सेवा किया है, जिस भाव से आपने लोगों का सेवा किया है वही भाव से आपकी सेवा हो जाएगी। और हमने देखा भी है, हमारे राजेंद्र सुबेदी है, जिस भाव से उन्होंने सेवा किया है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, कुछ भी नहीं है वो, लेकिन सब लोग उनका सम्मान करते हैं। इसलिए नहीं कि वो दिखने में वो सुंदर है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े पोजीशन में काम करते हैं, इसलिए सम्मान नहीं करते हैं। सब लोग हमारे डॉक्टर संघी से लेकर चपरासी तक उनका सम्मान क्यों करते हैं कि ये एक बड़े श्रेष्ठ सेवक हैं, यहाँ की सेवा करने में सबसे बेस्ट है। सब लोग उनको ताले बजाते हैं हमेशा, जब वो आते हैं स्टेज पर सब ताले बजाते हैं उनके लिए। और उनको वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, वैसे ही बैठे थे, सब लोग ताले बजा रहे हैं उनके लिए। क्यों बजा रहे हैं? ये एक मतलब बेस्ट एम्प्लॉय, बिना कंपटीशन के बेस्ट एम्प्लॉय है वो, क्योंकि तो सेवा भाव जो है ना सबको अच्छा लगता है। जो कोई सेवा भावी हो वो सबको प्यारा हो जाता है ना। किसके अंदर भी सेवा भाव होगा वो सबको प्यारा होता है, वो कोई वार्ड बॉय हो या नर्सिंग हो या किधर का भी लेवल का आदमी हो, वो सब व्यक्तियों को प्यारा हो जाता है, क्योंकि वो सेवा करने में उत्सुक है, वो कभी किसी को नाराज नहीं करेगा, कभी किसी को विश्वास ठुकराएगा नहीं वो कि मेरे पास आएगा तो सेवा अच्छी हो जाएगी आपकी। लोग याद करेंगे उसको कि जब भी हमारी सेवा उनके पास में होती है हमारा काम अच्छा हो जाता है। इसलिए आने वाले मरीज की भाव से सेवा करना ये हमारा यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीद है, मिशन है हमारा, मिशन। और अभी लास्ट में आपको एक कारण बताता हूँ कि ऐसा आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता भी है, ये भूलना मत। वो जब आता है ना यहाँ पर तभी हम लोगों की तनख्वाह निकलती है सबकी। वो जब आएगा तो हमारा तनख्वाह के लिए पैसा रहेगा इधर, वो हमारा बिल कटेगा तनख्वाह के रूप में। अगर मरीज नाम का आदमी यहाँ पर आना बंद कर देगा तो धीरे धीरे एक एक करके आपको सबको VRS देना पड़ेगा। हरे कृष्ण, थैंक यू। यहाँ पर आपके लिए भी सेवाएँ ख़त्म हो गई है, अभी आप जाइए आपका PF सब लीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा सेवा किया, कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए। जैसे हवाई जहाज़ के कंपनी में देश के लोग हवाई जहाज़ में यात्रा करने के लिए आएंगे नहीं, समझो सब लोग बोलेंगे नहीं बहुत महंगा है, अभी हम लोग बस से जाएंगे या हम लोग ट्रेन से जाएंगे, तो एक दिन अच्छे अच्छे पायलट को भी बोलना पड़ेगा थैंक यू सर, आप तो बहुत कुशल पायलट हो, लेकिन ये लीजिए आपका पैकेट और आप थैंक यू वेरी मच, और कोई नौकरी ढूंढ लीजिए। आप एयरहोस्टेस हो, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा सेवा किया ऑन बोर्ड मरीज की, अपना पैसेंजर की, हवाई जहाज़ के अंदर कितना अच्छा खातिर किया आपने इतने सेवा में, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच, आपका पैकेट लीजिए आप जाइए। क्योंकि जब तक पैसेंजर हवाई जहाज़ का टिकट निकालता नहीं है तब तक पायलट की और हवाई सुंदरी की तनख्वाह नहीं निकलती है। वैसे ही अस्पताल में जब मरीज नहीं आता है तो हमारे सारे पोजीशन बेकार हो जाते हैं, सिक्योरिटी से लेके रिसेप्शन से लेके RMO से लेके डॉक्टर से लेके नर्स से लेके सबको छुट्टी करके और कोई दुकान ढूंढना पड़ेगा। इसलिए भी स्वार्थ से क्यों ना हो फिर भी उसका आदर करना जरूरी है, क्योंकि वो मरीज नाम का आदमी जब यहाँ पर आएगा ना कुछ बीमारी लेके तो हम सबका परिवार चलेगा, हमारे बच्चे भी पलेंगे अच्छी तरह से, उनका भी लालन पालन अच्छी तरह से होगा, उनका पढ़ाई के लिए फीस भी मिलेगा, आपके लिए भी खाने पीने के लिए अन्न मिलेगा। कम से कम इतनी भावना से क्यों ना हो उस मरीज की अच्छी सेवा करनी चाहिए। और उसके ऊपर ये बेसिक हो गया, उसके ऊपर जाकर उनमें भगवान का अस्तित्व देखकर परमात्मा का रूप देखकर उनकी प्रेम से सेवा करना, भाव से सेवा करना, हृदय से सेवा करना, ये उसके ऊपर बोलते ना केक के ऊपर आइसिंग, बहुत जरूरी है। सबके साथ में प्लीज बोलकर बात करो। समझो आप अगर किसी हॉस्पिटल में गए, समझो आप स्वयं हाँ एडमिट होने के लिए और आप अभी अच्छे होकर डिस्चार्ज हो रहे हो तो डॉक्टर आपको बोल रहे हैं थैंक यू वेरी मच, आपने बीमार होने पर हमको चुना सेवा करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। नर्स बोलेगी थैंक यू वेरी मच, आपने हमको सेवा का मौका दिया। और सिक्योरिटी भी एकदम लास्ट में गेट के बाहर निकल निकलते सिक्योरिटी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं थैंक यू सर, आपने हमारे हॉस्पिटल में बीमार होने के बाद आने को चुना, थैंक यू वेरी मच। तो आप क्या बोलेंगे, अगली बार जब बीमार होगा ना इधर ही आऊँगा मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, क्या नुकसान है आपको थैंक यू बोलने में, उसने ऑलरेडी बिल तो चुका दिया है सब कुछ, आपने ट्रीटमेंट आपका ड्यूटी हो गया, आपको कोई तनख्वाह मिल रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन एक थैंक यू बोलने से आप मिलो मील जीत लेते हो आदमी के हृदय का, है ना। ये थैंक यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मरीज भी आपको थैंक यू बोलेगा, अरे आपने मेरा कितना सेवा किया, आपने कितना अच्छा सेवा किया, सिस्टर थैंक यू वेरी मच। वो नाइट वाले को बोलना हाँ प्लीज़, वो अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन वो नाइट वाले अभी रात को आएगी तो वो सिस्टर को भी बोलना थैंक यू वेरी मच, वो आफ्टरनून वाले को भी बोलना थैंक यू वेरी मच, वो RMO को भी बोलना थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो हमारे आए थे ना बेटे बरवास, वो आपको बोले ना, वो आपको मिले नहीं, हमको फ़ोन करके बताया, वो जो मैडम लता नाम की हमारी हाउसकीपिंग में थी उस समय, उनका फ़ोटो निकाल के मुझे भेजना उन्होंने बताया था, अमेरिका में, बोलो लता नायक का फ़ोटो मैंने ही निकाला, फिर जाके और उनको ईमेल से अमेरिका भेज दिया, और उन्होंने अमेरिका के कई अपने सेमिनार में दिखाया कि देखो भक्ति विदान के आया भाई कितनी अच्छी सेवा करती है। क्योंकि सेवा नौकरी सब लोग करते हैं, सेवा कम लोग करते हैं, सेवा जब करते हैं तो लोग उसको याद रखते हैं। फिर 5 साल के बाद मरीज कोई आएगा यहाँ पर और बोलेगा वो सिस्टर सुनीता किधर है, बोला तो क्यों नहीं, मुझे उनको मिलना था। बोला क्यों मिलना था, नहीं नहीं मेरे शादी होने वाली है अभी, मैं उसका कार्ड देने के लिए आई थी। अच्छा वो तो शादी होकर वो खुद बैंगलोर में काम करते हैं आजकल वो। अच्छा उसका फ़ोन नंबर मिलेगा क्या, क्यों नहीं मुझे उसको शादी को इन्वाइट करना है। बोला क्या हुआ था, जब मैं यहाँ पर एडमिट हुई थी ना, मेरा डिलीवरी था मेरा, सॉरी जब मेरी मम्मी मेरी आंटी डिलीवरी हुई थी, मैं भी एडमिट हुई थी, कितना अच्छा सेवा किया था उसने, इसलिए उसका नाम याद करके 5 साल के बाद भी आएंगे शादी में बुलाने के लिए। सोचो आप, सेवा जो है ना दिल को छूती है हमेशा, और इंसान की ज़िंदगी में उसको बहुत आगे आगे लेके जाती है, भगवान की नज़रों में बहुत आगे लेके जाती है। इसलिए मरीज़ को प्लीज़ और थैंक यू बोलना कभी भूलना नहीं। फार्मेसी में दवा लेने को आया, इतना सारा पैसा का आपका दवा लेगा आपका ना वो, आप बोलेंगे बिल कितना हुआ, 2400 रुपया। दूसरा का बिल कितना हुआ, 5800 रुपया। ओपीडी का पेशेंट आया तो बिल कितना हुआ, 680 रुपया। इतना इतना अमाउंट का दवा लेते हैं ना लोग मरीज, समझो हम लोग पैसा लिया दवा दिया निकल गए, लेकिन बीच में एक स्माइल दिया पेशेंट को, थैंक यू सर और कुछ आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ मैं आई हेल्प यू, तो उसको अच्छा लगेगा ना। पैसा तो दिया उसने, कुछ बड़ा विशेष बात नहीं हुई, लेकिन आपके थैंक यू में विशेष बात है, आपने उसको थैंक यू किया, प्लीज़ बोला उसको, प्लीज़ वेट सर मैं 2 मिनट में आपकी दवा निकाल के देता हूँ। ये प्लीज़ और ये थैंक यू, ये इंसानों की लैंग्वेज है। कुत्ता बिल्ली को थैंक यू प्लीज़ नहीं बोलते कोई, टॉमी प्लीज़ सिट हियर ऐसा कोई बोलता नहीं, टॉमी सिट हियर डोंट मूव ईट एंड सिट देयर ओनली, इंसान को बोलते प्लीज़ सिट डाउन प्लीज़ गेट अप। सोनोग्राफी में जाते हैं हम लोग तो बोलते हैं कपड़ा ऊपर करो, लंबी सांस लो, पकड़ के रखो, अभी छोड़ दो। तो वो अमेरिकन पेशेंट बोलता है ऐसे तो हम लोग कुत्तों से बात करते हैं। तो अगर आप बोलेंगे सर प्लीज लिफ्ट योर क्लॉथ, सर प्लीज लंबी सांस लो, सर प्लीज होल्ड करके रखो, सर वहां देखो, सर सांस छोड़ दो अभी, आप अभी लंबी सांस लो सर, प्लीज सर लंबी सांस लो। एक्सरे में कैसा करते हैं, वो आदमी को वो प्लेट के ऊपर चिपका देते हैं, है ना, देखा है ना आपने, ऐसा खड़ा करते हैं उसको, बोलते हैं अभी ऐसे खड़ा रहने का, मैं बाहर जाऊंगा और खिड़की से बोलूंगा सांस लो तो सांस लेने का, फिर मैं बोलेगा छोड़ दो तो छोड़ देने का। वो बेचारा अकेला रूम के अंदर ऐसा ऑड पोजिशन में खड़ा है ऐसे, अभी क्या करूँ, छोड़ दूंगा रखूँ सांस ऐसा। ऐसा असल में होता है, याद रखना इस बात का, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हम सब लोग के साथ में ऐसा ही करते हैं। अगर उसको बोलेंगे प्लीज़ आपको थोड़ा कष्ट होगा, इधर थोड़ा खड़ा रहना पड़ेगा, मैं बाहर जाऊँगा और मैं आपको बाहर से खिड़की से आवाज़ दूंगा कि आप सांस लो, तभी आप प्लीज़ सांस लेना, 1 मिनट के अंदर मैं शूटिंग करूँगा और थोड़ा आपको सांस लेने के लिए आप फ्री हो जाएंगे, तो कितना अच्छा लगेगा उसका। उसको ऑलरेडी छाती में दर्द है, पानी भरा हुआ है, टीबी हो गई, उसको ऑलरेडी परेशानी है, बुखार आया हुआ है, खांसी भी आ रही है, ऊपर से आप बोल रहे हो ऐसे खड़े रहो, है ना, ये सब लोगों की हकीकत है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर जगह पे लोगों को प्रेम की आवश्यकता होती है, और वो आप अगर देंगे तो आप भगवान के फरिश्ते हो, याद रखना इस बात का, आप भगवान के फरिश्ते बन जाते हो केवल ऐसा प्लीज़ और थैंक यू और थोड़ा प्रेम से ट्रीटमेंट देंगे तो। अरे हमारा भाग्य है, हमारा मौका है कि ऐसे हॉस्पिटल में हमको भगवान के भावना के वातावरण के अंदर दर्दियों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये हमारा कोई पूर्व पुण्याय का फल है ये, तो पूर्व पुण्याय का फल को खटखट मत समझना कि भाई क्यों हमने पुण्य किया है, काश किसी अच्छा होता मैं एयर होस्टेस बनकर फ्लाइट में काम कर दी, नहीं, दर्दियों की सेवा करना ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। तो आप सबको विनती है कि मैं बार बार बीच बीच में आपको ऐसा बताऊँगा कथा कि कैसे कैसे लोगों ने सेवा किया, अपने आप को भूल कर सेवा किया कि मैं राजकुमारी थी, स्वयं वो मनु राजा की लड़की थी मैं, कभी जमीन पर पाँव नहीं रखा मैंने, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने आप को भूल कर उसने अपने पति की सेवा की और फिर भगवान की माता बनी वो। है ना, तो ऐसा भाग्य आपको भी मिलेगा, ऐसा पुण्य आपको भी मिलेगा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे बोलते हैं ना अब की बार, वैसे आज के बाद प्लीज एंड थैंक यू याद रखना, आज के बाद प्लीज एंड थैंक यू। आपके पास गरीब से गरीब मरीज भी आएगा और आपके पास हेल्प लेने के लिए आएगा तो भी आप उसको थैंक यू बोलेंगे। हाँ, मोस्ट पुअर पर्सन एकदम फटीचर आदमी आपके पास आया और उसको हेल्प चाहिए आपके पास, तो आप उसको बोलेंगे थैंक यू कि आपने मुझे आपका सेवा करने का मौका दिया। कितना अच्छा लगेगा उसको, हाउ डिग्निफाइड ही विल फील। हाँ, आपको वो बेड पे ट्रीटमेंट लेने को आया, आप उसको थैंक यू बोले, डिस्चार्ज के समय थैंक यू बोले, उसको याद करेगा, आपका फ़ोन नंबर लेके जाएगा वो और आपको बर्थडे को हैप्पी बर्थडे बोलेगा। प्रेम देने से प्रेम मिलता है और देखभाल देने से देखभाल मिलती है। When you care, you receive care. When you give love, you receive love. When you give respect, you get respect. This is the principle of life. In giving, you receive. देने में ही हमको लाभ होता है। Thank you very much. Hare Krishna.